بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 10 ہے. آج ہم کتاب دانش اقبال کے چند پہلو ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف طالب حسین سیال ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں اسفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 9. وہ تو اس لیے میدان کارزار میں اترتا ہے کہ اپنا دفاع کرے اور مظلوم و کمزور کی مدد کرے تاکہ حقوق انسانی محفوظ ہوں. اقبال کامل مرد مرد شاہین. اقبال کا مرد کامل شاہین کی طرح غیور و جسور ہوتا ہے اور اس درویش پرندے کی طرح زاہد اور بے لوث ہوتا ہے. اقبال کے انسان کامل میں ضبط نفس ہے اور وہ آئین و قانون کا پابند ہے. اس کا سخن جانواز ہے جبکہ نقشے کا سپرمین جارے ہے اور بلند آہنگ ہے. وہ کسی اخلاقی ضابطے اور آئین کے تابع نہیں ہے. حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ. جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. بارہ جبریل. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. طارق کی دعا. بال جبریل. یہ واضح رہے کہ مسلمان حکمہ نے انسان کامل کے جو تصورات قائم کیے ہیں ان کے اذہان میں یہ عقیدہ ہمیشہ رہا ہے کہ مثالی انسان کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. عالم بشریت کی قوت و شجاعت، فراست و فطانت، رحمت و رافت اور ظاہری و باطنی حسن و جمال کے تمام امکانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بدرجہ کمال و نہایت نہا اور عیاں تھے. اقبال کا بھی یہی اعتقاد تھا. وہ پیغمبر اسلام کے نمونے پر مردان کامل کی ضرورت محسوس کرتے تھے جو مسلمانوں کی امامت و قیادت کر سکیں. ابن عربی، عبد الکریم الجیلی اور ان کے مکتب فکر کے صوفیہ نے مرد کامل کا صوفیانہ تصور دیا ہے جو شاید تارک الدنیا تو نہ ہو لیکن اس کا منصب دنیاوی معاملات میں قیادت کے فرائض پر انجام دینا نہیں ہے. وہ روحانی دنیا کا شہنشاہ اور قطب ہے جو عرفان و یقین کی بے پناہ قوت رکھتا ہے لیکن وہ سیاست و سلطنت کے معاملات میں دلچسپی نہیں لیتا. مجدد الف ثانی کے افکار کی روح سے مرد حق صوفی بھی ہے اور مرد سپاہی بھی. وہ روحانی وجد و کیف اور مشاہدات و الہامات کا لذت شناس بھی ہے اور شریعت اسلامی کا نافذ کرنے والا بھی ہے. مسلم مفکرین الفارابی، الماوردی اور ابن الطقطقی وغیرہ نے خلیفہ، امام اور سلطان وغیرہ کے جو نظریات پیش کیے ہیں وہ مملکت و سیاست کے تناظر میں پیش کیے ہیں. انہوں نے مرد کامل اور امام وقت کے جو اوصاف گنوائے ہیں وہ حکمران کے تقرر کے لیے ہیں یا ان چند لوگوں کے لیے ہیں جو حکمرانی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں. یہ وضاحت ضروری ہے کہ علامہ اقبال کا مرد کامل کا کوئی فلسفیانہ یا مذہبی نظریہ نہ تھا. وہ کسی مامور من اللہ مرد کامل کے قائل نہ تھے. وہ افلاطون کی طرح کسی فلسفی بادشاہ کا نظریہ نہیں رکھتے تھے. وہ اس نقطہ نظر کے بھی قائل نہ تھے کہ ہر دور کے لیے صرف ایک مرد کامل ناگزیر ہوتا ہے. وہ تو انسانی مساوات کے قائل تھے اور اس طرح دعوت دیتے تھے کہ ہر انسان اپنی کوشش اور جدوجہد سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے. ان کے نزدیک مرد کامل کی اکثر خوبیاں اور اوصاف اقتصابی ہوتے ہیں. ہاں یہ درست ہے کہ مردان کامل اتنے ارزاں نہیں ہوتے. ہر دور میں بڑی مشکل سے چند انسان ایسے پیدا ہوتے ہیں جن میں مرد کامل بننے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں اور وہ اپنی جدوجہد، ریاضت اور ضبط نفس سے اعلیٰ انسانی مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں. اقبال جب اپنی شاعری میں دیدہور اور مرد حق ایسی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں تو ان کے سامنے یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس قسم کے اعلیٰ انسان ہی اقوام کی قیادت کر سکتے ہیں. वो महकूम कौमों को आज़ादी और आज़ाद कौमों को आला नज़्बुल ऐन हयात से रोशनास कराते हैं। इकबाल अपने अहद की क़यादत के लिए एक या एक से ज़्यादा जामे सिफात मर्दान अमल की जस्तजू में थे। ऐसे मर्दान कामिल का रोल मॉडल ना उनको यूरोप में नज़र आया और ना ही अपने अहद के मुसलमानों में। उनको मर्दान कामिल अरबी शहसवारों की शक्ल में नजर आए, जिसमें बेपनाह क़ुव्वत ईमानी थी, जिनके नज़दीक दीन और दुनिया की तकसीम नहीं थी, जो जिंदगी की वहदत पर यकीन रखते थे, जिनका ताल्लुक आलम अनफुस से भी था और आलम आफाक से भी। उनका बातिन भी रोशन था और जाहिर भी। उनमें अहले शर्क की दाखिलियत भी थी और अहले गर्ब की खारजियत भी, बल्कि मगरबियों की खारजियत अमलियत पसंदी और तजुर्बाती साइंस उनकी तर्ज फिक्र का नतीजा और उनकी इस्तकराई दानिश की तौसी थी। उनमें फुक्र भी था और जौक खुदाई और हुक्मरानी भी। आह वो मर्दान हक, वो अरबी शह सवार, हामिल खल्क अजीम, साहिब सिदको यकीन, जिनकी हुकूमत से है फाश ये रम्ज गरीब, सल्तनत अहले दिल फुक्र है शाही नहीं, जिनकी निगाहों ने की तरबियत शर्क व गर्ब, जुल्मत यूरोप में थी, जिनकी खिरद राहबीन। मौलाना अबुल हसन अली नदवी अपनी तसनीफ नकूश इकबाल में लिखते हैं, इकबाल का वो गुमशुदा इंसान जिसे वो इंसान कामिल से ताबीर करते हैं कहाँ है और कौन है। मुझे डर है कि हम में से अक्सर इस सवाल का जवाब सुनकर चौंक पड़ेंगे, जबकि इनके सामने ये हकीकत आएगी कि इकबाल का इंसान कामिल एक सच्चा मुस्लिम है, और उनका ये चौंकना बड़ी हद तक बजा है, क्योंकि वो लोग जिनकी निगाहों के सामने लफ्ज मुस्लिम के बाद एक खुश्क जामिद और बुझी बुझी जिंदगी गुजारने वाले इंसान की तस्वीर फिर जाती है, वो कभी भी इकबाल के इंसान कामिल का तस्वीर किसी मुस्लिम से नहीं कर सकते। लेकिन इकबाल का मर्द मोमिन दरअसल कुरानी नजरिए का इंसान कामिल ही है। इकबाल वाकई उन मर्दान कामिल की तलाश में थे जो असलाफ की तरह यकीन व ईमान रखते हों और असर ताज़ा का फहम भी रखते हों। वो अपनी कुव्वत काहिरा और दानिश से न सिर्फ गैरों की गुलामी और महकूमी से मुसलमानों को निजात दिलाएं, बल्कि उनको इस काबिल बनाएं कि वो पूरी दुनिया को इस्लामी उसूल अदल व मसावात से आगाह करें। इकबाल मुसलमानों के लिए निशात सानिया का जो ख्वाब देख रहे थे, वो सिर्फ मुसलमानों की आज़ादी और उनकी अपनी हुकूमतों के क्याम तक महदूद न था, बल्कि वो इंसानी हुकूमत और इज्तमाही अदल इंसाफ पर मबनी आलमी मुआशरा कायम करना चाहते थे। इसलिए वो तलकीन करते हैं, सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ये दुरुस्त है कि अल्लामा इकबाल का इंसान कामिल मर्द मोमिन है और उनके अव्वल मुखातबीन भी मुसलमान हैं, लेकिन उनका पैगाम अजमत आदम और उखुवत इंसानी आफाकी है। वो मर्द मोमिन की सीरत के नमूने पर कई मर्दान कामिल देखना चाहते थे जो इस दुनिया में इंसानी कदरों का अहिया करें। मादियत परस्ती से इंसानियत को निकाल कर यकीनों ईमान की लज्जतों से आशना करें, ताकि हयात बामानी और नेमत परवरदिगार आलम नजर आए। यही वजह है कि इकबाल ने मर्दान इश्क व अमल की ख्वाह उनका किसी इलाके और मजहब व मिल्लत से ताल्लुक हो तारीफ व तहसीन की है। उन्होंने महात्मा बुद्ध और गुरु नानक को खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने श्री कृष्ण को अजीम शान इंसान करार दिया है, जिसने दिलफरेब पैराए में अपनी मुल्क कौम को फलसफियाना रिवायात पर तनकीद की और इस हकीकत को आशकार किया कि तर्क अमल से मुराद तर्क कुल्ली नहीं है, बल्कि तर्क अमल से मुराद ये है कि अमल और उसके नतायज से मुतलक दिलबस्तगी न हो। इकबाल ने मगरबी हुकमा की वसत नजर और इंसान दोस्ती को सराहा है। वो तंग नजर मुल्ला न थे, बल्कि रासिखुल अकीदा मुसलमान थे जो आफाकी सच्चाई के अलमबरदार थे। वो तमन्ना करते थे कि हर कौम में ऐसे आला इंसान पैदा हों जो तर्ज कोहन को मिटा दें और अपने जमाने के तकाजों के मुताबिक कौम में नई रूह फूंक दें। ऐसे कामिल इंसानों को इकबाल मर्द हक और मर्द हुर के वसीहुल मफहूम नामों से पुकारते हैं, जो सिर्फ अपनी कौम तक महदूद नहीं होते, बल्कि उनका पैगाम आफाकी होता है और वो तमाम बनी नौ इंसान के लिए काबिल फख्र होते हैं। मर्द हक अज कस नगीर्द रंगबू, मर्द हक अज हक पजीरद रंगबू, हर जमा अंदर तनश जाने दगर, हर जमाना ऊरा चूं हक शाने दगर। बंदा हक बे नियाज अज हर मकाम, ने गुलाम और ना ऊ कस रा गुलाम। बंदा हक मर्द आजाद दस्त बे बस तो बस। बंदा हक मर्द आजाद दस्त तो बस। मुल्क को आई नश खुदा खुदा दाद दस्त तो बस। रस्मो राहो दीनो आईनश हक, जश्त हो खूब व तल्ख हो तो शनेश हक। जावेद नामा। अल्लामा इकबाल का नजरिया खुदी हर फर्द में मर्द कामिल बनने की आरजू पैदा करता है। हर फर्द बहैसियत इंसान बजात खुद मुकम्मल है, वो किसी फर्द से फरोतर नहीं। हर फर्द की साथ कदे में सलाहियतों का एक खजाना छुपा होता है। इस पर मुनहसर है कि वो उस खजाने की तलाश करता है या अपने आप को हालात के रहमो करम पर छोड़ देता है। मर्द कामिल बनने की आरजू को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए सख्त मेहनत की जरूरत होती है। कई इब्तलाओं और आजमाइशों में से गुजरना पड़ता है। यह अज़्म हिम्मत और अमल व पैकार की दुनिया है। फितरी लिहाज से तमाम इंसान बराबर है, लेकिन दानिश व तकवा और इल्म व अमल से कोई कायद बनता है, कोई जीनियस और गैर मामूली कहलाता है, और कोई अजीम व जईम बनता है, जबकि जहालत व बेअमली और नज्म व जब्त के फुकदान से कोई मोहताज व मजबूर हो जाता है। यही जाब्ता और उसूल कौमों पर भी सादिक आता है। इकबाल ने अपनी मंजूमात में मर्द कामिल के बारे में जो कुछ कहा है, उसे तारीख मंजर पस मंजर में भी समझना चाहिए। इकबाल के अहद में उम्मत मुस्लिमा के कई हलकों में मर्द कामिल का तसव्वुर जेर बहस रहता था। आम मुसलमान ऐसे हिदायत याफ्ता कायद के मुंतजर थे जो उनको गुलामी और जिल्लत की जिंदगी से निकाल कर इज्जत और इकतदार की जिंदगी में दाखिल करे। अल्लामा इकबाल ऐसे अमीक नजर मुफक्किर किसी खास मर्द कामिल के जहूर के कायल न थे, और ना ही वो ये समझते थे कि महज आला क्यादत से मसाइल हल हो जाएंगे। इसके बरक्स वो पूरी कौम को बेदार करने के कायल थे, लेकिन उस जमाने में अहले हिंद महकूम थे और तमाम उलूम तक रसाई अवाम की रसाई भी नामुमकिन थी। इसलिए वो चाहते थे कि कोई ऐसी मुखलिस और रोशन ख्याल क्यादत मैसर आए जो गुलामी की जंजीरों से आजादी दिला सके। इकबाल के दौर में रूए जमीन पर कई अकवाम महकूम थी, और वो दौर इस्तेमारी ताकतों के उरूज का दौर था। इसलिए इकबाल ऐसे मर्दाने कामिल की तलाश में थे जो इन महकूम व मखूर कौमों को आजाद कराएं और उनको उस काबिल कर दें कि वो अपनी अपनी सकावत के मुताबिक जिंदगियां गुजार सकें। अगर इकबाल मौजूदा दौर में होते तो शायद इतनी कसरत से मर्द कामिल की इस्तलाह इस्तेमाल न करते। आज के दौर में इदारे अफराद से कहीं ज्यादा अहम हैं। आज इदारों को फाल और मजबूत करने की जरूरत है। आज मर्दाने कामिल से कहीं ज्यादा मर्दाने महारत की जरूरत है जो मुख्तलिफ शोबों में मसलन सियासियात, मुआशियात, इमरानियात, तरक्यात और बिजनेस में बसीरत और महारत के हामिल हों। हवाला जात। नंबर 1, फरमान फतेहपुरी डॉक्टर इकबाल सबके लिए 1978 कराची सफा 271। नंबर 2, इकबाल फरमान फतेहपुरी डॉक्टर इकबाल सबके लिए 1978 कराची सफा 276। नंबर 3, अली अब्बास जलालपुरी फिक्री मुगालते तख्लीकात लाहौर 1999 सफा 91। नंबर 4, डॉक्टर इकबाल शजरात फिक्र इकबाल मजलिस तरक्की अदब लाहौर 1983 सफा 95। नंबर 5, अबुल हसन अली नदवी सैयद नकुश इकबाल सर्विसेज बुक क्लब सफा 118। इकबाल की नजर में तसव्वुफ की नई तश्कील। बरे सवेर पाक हिंद में सूफिया किराम के फैजान नजर से इस्लाम की खूब खूब अशात हुई, और बड़े बड़े बाअसर कबाइल इन्हीं बुजुर्गों के हाथों मुशर्रफ व इस्लाम हुए। सूफिया इजाम की मजहबी इल्मी और अदबी खिदमात सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल है, लेकिन दौरे महकूमियत में सूफियाना मसलक भी इन्हेदात का शिकार हो गया और कई हजरात ने पीरी के तस्वुर को बदनाम किया। मलफूजात इकबाल में इकबाल की जबानी एक वाकया इस तरह दर्ज है। जब मैं यहाँ जावेद मंजिल में आ गया तो एक रोज एक पीर साहब मुझे मिलने आए। दोपहर का वक्त था, गर्मी पूरे जोरों पर थी, धूप पर नजर न जमती थी कि एक शख्स पसीने में शराबोर हाँपता हुआ आया और पीर साहब के कदमों में गिरा। ये उनका मुरीद था। कहने लगा, हुजूर की आमद की इत्तला मिली थी। सुबह सुबह ही मुगलपुरा से चल पड़ा, कई मकामात पर गया, लेकिन आप वहां से तशरीफ ले गए। आखिर मालूम हुआ कि आप यहाँ हैं। खुदा का शुक्र है कि आप मिल गए हैं। हुजूर, मेरी हालत बड़ी खराब है, फाका मस्त हो गया हूँ, 200 रुपया का कर्जदार हो चुका हूँ, मुलाजमत मिलती नहीं। आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मेरी मुश्किलात का खात्मा हो। ये कहा और जेब से 2 रुपए निकाल कर पीर साहब की नजर गुजारी। पीर साहब ने रुपए जेब में डाले और हाथ उठाते हुए कहा, डॉक्टर साहब आइए दुआ कीजिए। मैंने कहा, आप दुआ पहले मांग लीजिए, मैं बाद में मांगूंगा। पीर साहब ने आंखें मीच ली और जेरे लब कुछ कहने लगे। दुआ खत्म की, हाथ मुंह और दाढ़ी पर फेरे, मुरीद पर फूंक मारी। वो फूले ना समाया कि अब मेरी तंगदस्ती और जुबू हाली की घटाएं छट गईं। मैंने कहा, पीर साहब अब मेरी बारी है। चुनाचा मैंने हाथ उठाकर बा आवाज बुलंद कहना शुरू किया, ए खुदा, आजकल के पीरो मुर्शिद भटक गए हैं, उन्हें राह रास्ते। पीर साहब ने सदाए एहतजाज बुलंद की कि डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं, होश की दवा कीजिए। मैंने कहा, देखिए पीर साहब, मैं आपकी दुआ में बिल्कुल मुखिल ना हुआ, मुझे भी इत्मीनान से दुआ मांग लेने दीजिए। वो खामोश हुए तो मैंने कहा, ए खुदा, आजकल के मुरीदों को भी हिदायत दे कि वो अपने पीरों के कहने में ना आए। पीर साहब ने फिर टोका, लेकिन मैं ना रुका। ये नादान मुरीद कहता है कि मैं 200 रुपए का कर्जदार हो गया हूँ, लेकिन नहीं जानता कि अब 200 रुपए का कर्जदार हो गया है। पीर साहब अब ज्यादा बरहम हो गए, कहने लगे, देखिए ये नामुनासिब है, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मैंने कहा, अच्छा मैं दुआ खत्म कर देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, आप ये 2 रुपए मुरीद को वापस कीजिए, उसे कर्जे से सुबुकदोश करने का बंदोबस्त कीजिए और उसे नौकरी दिलाइए। पीर साहब नाराज तो बेहद हुए, लेकिन वो रुपए उसी वक्त वापस कर दिए और बाकी शराइत पूरे करने का वादा किया। इकबाल की नसरी और शहरी तख्लीकात के मुताले से मालूम होता है कि इकबाल की ताबीर इस्लाम में तसव्वुफ का उनसर नुमाया है। तहम उनके मुतसव्वुफाना अफकार मुतदावल तसव्वुफ से मुख्तलिफ हैं। अस्हाब तसव्वुफ की गालिब अक्सरियत इस कायनात को वहम तलिस्म और फरेब नजर समझती है। उनके नजदीक की दुनिया और उसकी राहतें काबिले तवज्जो नहीं है। इंसान का माबूद मकसूद और मतलूब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। कवानीन फितरत का खोज लगाना और फितरत की तस्खीर से इंसानी जिंदगी को महफूज आरामदेह और तरक्की याफ्ता बनाना सूफिया के मकासिद में शामिल नहीं है। खारजी आलम उनके नजदीक एक हिजाब है। इस हिजाब के कशफ के बगैर हकीकत मुतल्लका से राबता नामुमकिन है। इसके बरक्स अल्लामा इकबाल फितरत कायनात को सीरत इलाहिया करार देते हैं। फितरत में तफहुस करना और उसके नवामीस व कवानीन दरियाफ्त करना खुदा से राबते की एक सूरत है। जहरी कायनात मुशाहिदा हक की राह में हिजाब नहीं और ना ही ज़ात इलाहिया महजूब है, बल्कि ये कायनात हक ताला की नमूद और वजूद हक की दलील है। इकबाल फरमाते हैं, ذات حق را نیست این عالم حجاب، غوطرا حائل نگردد نقش آب۔ اقبال فطرت کی تفسیر کو انسان کا منصب قرار دیتے ہیں۔ وہ افلاطون کے اس نظریے کی تردید کرتے ہیں کہ حواس خمسہ کے ذریعے حقیقی علم تک رسائی ناممکن ہے۔ وہ قرآن کے حوالے سے ثابت کرتے ہیں کہ سماع و بصر علم کے ذرائع ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو صوفیہ عقل کو ذریعہ علم تسلیم نہیں کرتے، उनके इस नजरिए का तारीख मजहब में कोई जवाब नहीं मिलता। वो वजाहत करते हैं कि फितरत पर इंसान के गलबे ने उसे नया यकीन और अपने माहौल की कुवतों पर नई बरतरी का एहसास दिलाया है। अल्लामा इकबाल कायनात को जो बजात खूबसूरत और दिलकश है जमालियाती नुक्ता नजर से देखते हैं और इसमें मार्फत किरदिगार पाते हैं। उन्होंने पहाड़ों, सहराओं, सितारों और दीगर मजाहिर फितरत पर कई खूबसूरत और इरफान खेज नज़में लिखी हैं। वो रहमत खुदाबंदी के मजाहिर से लुत्फ अंदोज होने और अल्लाह की नेमतों से तमत्तो हासिल करने की तरगीब देते हैं। कुरान हकीम ने हुस्न जमाल फितरत को दिलनशीन पैरायों में कई मकामात पर बयान किया है। सूरह रहमान इसकी वाज़ह मिसाल है। सूफिया के लिटरेचर में ज़ाहरी कायनात के हुस्न जमाल को काबिल एतना नहीं समझा गया, बल्कि जमाल हकीकी में महव होने के लिए इससे एराज जरूरी समझा गया है। सूफिया जन्नत के हुस्न जमाल और नाइन से रगबत रखने को अशराफ नफ्स गर्दानते हैं। वो हमेशा जमाल हकीकी के मुशाहिदे में मशगूल होते हैं। वहां से एक लम्हे के लिए तवज्जो हटाने से उनकी मोहब्बत का तार टूट जाता है। कायनात और उसकी रौनक माँ सिवा अल्लाह है, इसलिए ला यानी है। इस सूफियाना नुक्ता नजर के आईनादार ये अशार हैं। बा यार बा गुलजार शुदम रह गुजरी, बर गुल नजरे फगंदम अज बेखबरी। दिलदार बताना गुफ्त शर्मत बादा, रुखसार मन ई अस्त तू दरगल तरगुल नगरी। लवाह अब्दुल रहमान जामी। यानी मेरा यार के साथ गुलिस्तान से गुजर हुआ, बेखबरी में मेरी नजर एक फूल पर पड़ गई। दिलदार ने तानाजनी करते हुए कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरे रुखसार के होते हुए तूने फूल पर निगाह डाली। सूफिया का मसलक दुरून बीनी है। वो जहान बीनी और खुद बीनी को राह तरीकत में हारिज समझते हैं। कहते हैं कि जब एक सूफी का चीनी आईना टूट गया तो उन्होंने कहा कि खूब शुदा सबाब खुदबीनी शिकस्त। रिवायती तसव्वुफ के उसे इंसान को जाहिरी आलम के बजाय कायनात बातिन में गौर करना चाहिए, और जब उसकी बातिन की आंख खुलती है तो उसे मालूम हो जाता है कि कायनात और ये दुनिया माया है और उसकी कोई हकीकत नहीं। इसके बरक्स इकबाल इस तकराई दानिश के नजरिया कायनात और उसके निजाम पर गौर व फिक्र की दावत देते हैं। वो इसे हकीकत मुतलका का काबिल मुशाहिदा पहलू करार देते हैं। इकबाल समा बसर के जरिए माजी और हाल के वाकयात पर तफक्कुर की ताकीद करते हैं। यही तरीक तदब्बुर है जिसकी बुनियाद पर एक जिंदा और पायदार तमद्दुन की बुनियाद रखी जा सकती है। खारिज से फरार इख्तियार करके बातिन की तरफ रुजू करने वाली अकवाम किसी जिंदा तमद्दुन की खालिफ नहीं हो सकती। तारीख का तज्जिया करते हुए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, तसव्वुफ की लिटरेचर का बेशतर हिस्सा हिकायात सूफिया पर मुश्तमिल है। बिलाशुबा मुतकद्दमीन सूफिया ने इखलाक महासिन मसलन इखलाक तकवा और जोहद पर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन बाद के सूफिया की किताबों में बेशुमार हिकायात पाई जाती हैं जिनमें सूफिया की मुहय्यरुल उकूल रियाजतों और करामतों का बयान है। ये बात तो कई सूफिया के बारे में मनकूल है कि उन्होंने 40 साल या उससे कमोबेश ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ी है और कई कई दिनों का रोजा रखा है। कई सूफिया ने तजर्रुद की जिंदगी को तरजीह दी। इस सिलसिले में बड़ी दिलचस्प और ख्याल आफरीन हिकायात मिलती हैं। एक हिकायत जो कशफुल महजूब में नकल की गई है वो इस तरह है। मुर्तईश रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बयान किया जाता है कि आप बगदाद के एक महल्ले से गुजर रहे थे, प्यास लगी तो एक बड़े फाटक के पास खड़े होकर पानी तलब किया। एक लड़की पानी का अपखोरा लेकर बाहर आई और पानी पिलाया। पानी पी चुके तो आपने महसूस किया कि मेरा दिल साकी के हुस्न जमाल का असीर हो चुका है। चुनाचा आप उसी जगह बैठ गए। इतने में घर का मालिक आ गया। आपने कहा, मुझे सख्त प्यास लगी हुई थी, तुम्हारे घर से पानी का एक गिलास दिया गया है, मगर साथ ही मेरा दिल भी कैद हो गया है। उस शख्स ने कहा, जिस लड़की ने आपको पानी पिलाया है वो मेरी दुख्तर है, मैं उसे आपके निकाह में देता हूँ। हजरत मुर्तईश रहमतुल्लाह अलैह दिल के हाथों मजबूर होकर उसके साथ घर में दाखिल हुए और निकाह कर लिया। ये शख्स बगदाद के मालदार लोगों में से था। उसने हजरत मुर्तईश रहमतुल्लाह अलैह को फौरन हम्माम में भिजवाया, उन्हें खूबसूरत पोशाक पहनाई और उनसे फकीरों वाला पैबंद लगा लिबास उतरवा दिया। जब रात हुई तो हजरत मुर्तईश नमाज के लिए उठे। आपने इरादा किया कि पहले नमाज और जरूरी अदवाओ अशगाल अदा कर लूं। इतने में यकायक चीखने लगे कि लाओ मेरा खरका, जल्दी लाओ मेरी गुदड़ी। घर वालों ने पूछा क्या हुआ। फरमाने लगे, मुझे गैब से आवाज आई है कि तूने हमारी मर्जी के खिलाफ एक निगाह उठाई है, तो हमने तेरे जाहिर से इस्लाह का लिबास और अपनी दोस्ती का खरका उतार लिया है। अगर दूसरी मर्तबा नजर करेगा तो तेरे बातिन से हम अपनी आशनाई का लिबास भी खींच लेंगे। जो लिबास कुर्बे खुदाबंदी और औलिया अल्लाह की इत्तबाद में पहना जाए हमेशा मुबारक होता है। अगर इस लिबास के हुकूक की रियायत की जा सकती है तो उसे पहना जाए, वरना अपने दीन की मुहाफिजत ही काफी है। औलिया अल्लाह के लिबास में खैरत करना किसी तौर भी जायज नहीं। کیونکہ کسی دوسرے دعوے کے بغیر صرف سچا مسلمان رہنا ولایت کے جھوٹے دعوے سے یقیناً بہتر ہے۔ صوفیہ کی ریاضت اور مجاہدے کے بارے میں حیران کن باتیں سہیل تستری رحمت اللہ علیہ، متوفی 283 ہجری، کہتے ہیں، میں نے اپنی خوراک کو بہت کم کر دیا، اس طرح کہ ایک درہم کا فرق بھر جو خرید لیتا، اسے پیس لیا جاتا اور روٹی پکا لی جاتی، اور میں ہر رات صرف روکھی روٹی، جس کے ساتھ نہ نمک ہوتا اور نہ سالن، افطار کرتا، چنانچہ میرے لیے ایک درہم سال بھر کے لیے کافی ہوتا۔ اس کے بعد میں نے 3 راتوں کے بعد افطار کا اہتمام کر لیا، پھر بڑھاتے بڑھاتے 5 کیا، پھر 7، پھر 25، اس طرح میں نے 20 سال گزارے۔ پھر میں کئی سال سیاحت کرتا رہا اور پھر تستر لوٹ آیا، اب میں رات بھر قیام میں رہتا ہوں۔ متقدمین صوفیہ میں تقریباً تمام قرآن و سنت کے عالم اور فقہ کے جاننے والے تھے، متوسطین میں سے بھی کئی متشرع اور عالم و فاضل تھے، لیکن کچھ اصحاب سکر تھے۔ حکایات زیادہ تر انہی صوفیہ کے بارے میں ہیں، ان حکایات نے عوام کا تصوف پر اعتقاد مضبوط کیا ہے، لیکن اہل علم کی تشکیک کو بڑھایا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان حکایات و امثال پر تحقیقی نظر ڈالی جائے اور ان کو روایات و درایت کے اصولوں پر پرکھا جائے۔ علامہ اقبال فلسفیانہ اور سرمست کرنے والے تصوف سے نالا تھے، جس نے ذہین و پتین مشاہیر کی شاعری اور نثر کے ذریعے امت مسلمہ میں بے عملی اور اباحت پسندی کے رجحانات کو تقویت دی۔ پیری و مریدی کے نظام نے تخلیقی رجحانات کی حوصلہ شکنی کی اور متاخرین صوفیہ لکیر کے فقیر ہو گئے۔ وہ اپنے مریدوں کو ایک فعال اور متحرک صوفیانہ نظام دینے سے قاصر رہے اور امت کے عمرانی مسائل سے غافل رہے۔ اسی علمی جمود کی بنا پر اقبال پکار اٹھتے ہیں، 300 سال سے ہیں ہند کے میں خانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام اے ساقی، شیر مردوں سے ہوا بے شائع تحقیق تہی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام اے ساقی۔ اقبال تزکیہ نفس اور مکارم اخلاق کے قائل تھے، لیکن وہ نفس کشی اور فطری بشری تقاضوں کو کچلنے کے قائل نہ تھے، بلکہ ان کا خیال تھا کہ انسان ان تقاضوں کی بیخ کنی پر قادر ہی نہیں۔ انہوں نے اپنے دوست سوامی رام تیرتھ 1873 تا 1906 کے بارے میں ایک بات بتائی جو سبق آموز ہے۔ سوامی جی سرمست ویدانتی صوفی تھے۔ چند ہندو اصحاب جو علامہ سے ملنے کے لیے آئے، ان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، آپ لوگوں نے سوامی جی کی زندگی سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا اور نہ اس عبرت کا جو ان کی زندگی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کتاب میں ذکر ہے، انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا، آپ کو معلوم ہے کہ فلا سال سوامی جی اپنی تعلیم ہما اوست اور برہمچاریہ کے پرچار کے لیے امریکہ تشریف لے گئے۔ وہاں بعض لوگ جن میں مرد اور عورتیں دونوں شامل تھیں، ان کے حلقہ اثر میں آ گئے۔ ان میں ایک مریدنی ضرورت سے زیادہ فیضیاب ہوئی، لیکن واپسی پر سوامی جی اس عورت اور بچے دونوں کو امریکہ میں ہی چھوڑ آئے۔ یہ واقعہ ایک نہایت اہم اور عبرت آموز سبق ہے جو سوامی جی کی زندگی سے حاصل ہوتا ہے، کہ وہ خود برہمچاریہ کو نباہ نہ سکے اور اپنے سیل سے انہوں نے اپنی تعلیم کو غلط ثابت کر دکھایا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس غلط اصول کو چھوڑتے، انہوں نے اپنی ناکامی کو چھپانا چاہا اور اس وجہ سے بچے اور اس کی ماں کو امریکہ میں چھوڑ کر ایک اخلاقی گناہ کا ارتکاب کیا۔ اقبال ایک ماہر عمرانیات کی حیثیت سے اس دنیا میں انسان کے بنیادی مسائل کی طرف متوجہ تھے، جن میں بھوک، بیماری، جہالت اور محکومیت سر فہرست ہیں۔ صوفیہ کے لیے سائنسی اور سماجی ترقی قابل اعتنا نہ تھی، بلا شبہ وہ انسان دوستی کی تبلیغ کرتے تھے، دکھی انسانوں کی دل جوئی کرتے تھے، غریب اور مخلوق الحال انسانوں کو ان کے لنگر خانوں پر کھانا ملتا تھا، جبکہ ان کی خانقاہوں کے ارد گرد جاگیردانہ نظام کا تسلط تھا۔ صوفیہ ضرورت مندوں کی اور طریقوں سے بھی امداد کرتے تھے، لیکن ان کا معاشی انحصار فتوح اور زنبیل پر تھا۔ ان میں سے بہت کم ایسے تھے جو کسب معاش پر یقین رکھتے تھے۔ صوفیہ انسان کے بنیادی مسائل یعنی افلاس، جہالت، محکومیت اور معاشی محتاجی کو ختم کرنے کے لیے وسیع البنیاد اور باقاعدہ لائحہ عمل کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے اور معاشرے کو خود کفالت کی راہ نہیں بتاتے تھے. اقبال احترام آدمیت، فقر و زہد اور استغنا کے عمرانی مقاصد کی طرف متوجہ تھے، جس طرح کے قرون اولی کے مسلمانوں کی مثالیں ملتی ہیں. مثلا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں مجھے انہی میں دفنا دیا جائے، کیونکہ نئے کپڑوں کی زندہ بندوں کو زیادہ ضرورت ہے. اقبال اور اوراد و وظائف پر قصب حلال کو ترجیح دیتے تھے. فکر اقبال میں گلہ بانی، کسان کی سخت کوشی اور مزدور کی محنت کشی اس صوفی کے مجاہدوں اور ریاضتوں سے افضل ہے جس کا معاشی گزارا فتوح پر ہے. اقبال کے نزدیک تصوف ایک احساس ہے کہ ہر انسان کائنات میں فعال وجود رکھتا ہے. یہ کائنات چیز نہیں ہے بلکہ عمل ہے، اسی لیے عمل کا ہی تقاضا کرتی ہے. پارٹ نمبر 10 یہاں مکمل ہوتا ہے.